الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कि हम तफसीर पढ़ते हैं मारफ कुरान जिल्द नंबर 5 से, जो आयात अभी तिलावत की गई वो और अप टू आयत नंबर 35, 30 to 35, 30 से 35, इनका हमने खुलासे तफसीर भी पढ़ लिया था और मारफ मसाइल चल रहे थे। पेज नंबर 62 के ऊपर हम थे, जिसमें ये आयत कालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फीही وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. ٹھیک ہے، یہ والی آیت چل رہی تھی کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس عورت نے کہا کہ بس یہ ہے، ٹھیک ہے، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، کہ جس کے لیے نا تم مجھے ملامت کرتی تھی، ملامت کرنا، لم تننی، ملامت کا لفظ عربی سے آیا لاما یا لومو، اور تحقیق کے میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کری لیکن وہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، فستعصم، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ کام جس کا کہ میں نے اس کو حکم کیا ہے تو ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا یا وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا، رسوا ہونے والوں میں سے ہوگا، صاغرین، ٹھیک ہے، جس کی عزت نہیں ہوتی تو وہ چھوٹا شخص کہلایا جاتا ہے معاشرے کے اندر. اس کی تفسیر میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ وہ عورت بولی کہ دیکھ لو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی شی ایکچولی ایڈمیٹڈ، ہے نا، یعنی عورتوں کے سامنے اپنی اس غلط فعل کا اس کا اعتراف کیا. پول تو کھل ہی چکا تھا، اس کی شوہر کے سامنے بھی اس کا پول کھل چکا تھا، اور اس نے خود ہی جو ہے وہ اپنے پیٹ کی بات باہر پورے محلے کے اندر نکال دی تھی، تو اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے نا پھر اب یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی تھیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ معاشرہ پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر کے اس چیز کو جو ہے وہ فخریہ بیان کیا جائے، جیسے کہ آج کا ویسٹرن معاشرہ ہے نا، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو بالکل ہی بےہودہ قسم کے لوگ ہو چکے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر کے اور ویسٹرن معاشرے سے جو ہے وہ انسپائر ہو ہو کر کے اپنے گناہ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑے یعنی خوش ہو کر کے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اس معاشرے کے اندر دیکھیں اس چیز کو ایک برائی سمجھا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ مکر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مکر گئی تھی نا، ورنہ اس کو کیا فکر تھی مکرنے کی. اگر جو ہے وہ ملٹیپل بوائے فرینڈز ہونا جو ہے وہ ایک فخریہ بات سمجھی جاتی تو پھر اس کو مکرنے کی اپنے شوہر کے سامنے کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر جو اس نے عورتوں کے سامنے بات رکھی ہے یہ کوئی فخریہ انداز میں بات نہیں رکھی تھی، بلکہ وہ ملامت والا ایک عنصر وہاں پر تھا، اور ملامت اسی چیز پہ کی جاتی ہے جس کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال पेट की बात निकालना एक अलग चीज होती है और किसी गुनाह को फखरिया बयान कर देना एक अलग चीज होती है। हम यहाँ पे बेसिकली इसका फर्क बता रहे थे आपको खाली। तो उसने कहा कि वाकई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की कोशिश की थी, मगर ये पाक साफ रहा और आइंदा ये मेरा कहना ना मानेगा तो बेशक जेल खाने भेजा जाएगा और बेइज्जत भी होगा। ठीक है, यानी एक तरफ से वो तारीफ भी कर रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि ये अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया और पाक साफ रहा और इसी इस्तकामत के साथ डटा रहा, लेकिन साथ साथ जो है ना वो ये भी कह रही है कि अगर मेरी बात नहीं मानता ना तो फिर उसको सजा होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे, है ना? एक तरफ जो है वो तारीफी बात कर रही है, मैंने इसको सुनाने की कोशिश करी लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया, दूसरी तरफ जो है वो सजा भी। तो ये क्या है, इसको आप कुछ बताएंगे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? ठीक है ना, ये यानी इसको क्या कहेंगे, राइट? इनकंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे, इनकंसिस्टेंसी, इनकोहेरेंस, एक बात जो है वो दूसरी बात से जोड़ नहीं रखती, एक एक बात दूसरी बात से जोड़ नहीं रखती। भाई आप किसी किसी बंदे को जब आप उसकी अच्छाई बयान करते हैं तो फिर आप उसको सजा तो नहीं देते ना, या उसको सजा की धमकी तो नहीं देते ना, या जिसको आप सजा की धमकी दे रहे होते हैं तो फिर आप उसकी नेकी को जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, है ना? तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। इसको कहते हैं बिल्कुल बेजोड़ मामला रखना, और ये बेजोड़ मामला जो है वो किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जिसमें जो है ना जब किसी की अकल के ऊपर जज्बात गालिब आ जाते हैं ना, जब किसी की अकल के ऊपर उसके जज्बात गालिब आए हुए होते हैं ना, तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है, ऐसी बातें करता है, बिल्कुल बेजोड़ बात है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने औरत जात को कैसे बनाया, ये तो पूरी जात के एतबार से ये जात ऐसी है कि जिसके ऊपर जज्बात गालिब रहते हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर जज्बात गालिब रहते हैं, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही जज्बात के लिए, जज्बात के साथ बनाया, ठीक है ना? तो उसने तो ऐसी बेजोड़ बातें करनी है ना, कभी कुछ कभी कुछ, एक ही शख्स के बारे में अच्छी बात भी करेगी, एक ही शख्स को जो है वो सजाओं की धमकी भी देगी, एक ही शख्स को जो है वो प्यार भी करेगी, उसके साथ जो है ना वो फिर जो है वो अजीब गरीब तरीके से नाराज भी रहेगी, और अजीब गरीब किस्म का मामला होता है, ठीक है ना? तो ये चीज जो है वो औरत जात के साथ है, इस क्लास के अंदर औरतें भी मौजूद होंगी क्योंकि हमने वहां पे इन्विटेशन भेजी भी है, तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि अच्छा जी औरतें कोई नहीं है तो मर्दों में बैठ करके औरतों की बुराई या करो, नहीं, हम यहाँ पे एक मकसद से ये बात कर रहे हैं, एक मकसद से ये बात कर रहे हैं। वो मकसद क्या है, अगर आप में से कोई भापे उस मकसद को, राइट, कोई भापने की कोशिश करेगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि औरत जात जज्बात से मغلوب होती है और उसकी बातें जो होती है ना वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है ना? तो इससे हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ख्याल है? अगर करना चाहिए तो क्या सबक हासिल करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो फिर आप जो है वो क्लास में करके आ रहे हैं, है ना? आपको इस क्लास में होने की जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है? तो सबक क्या हासिल करना चाहिए, एक इन्होंने सबक लिखा, डोंट ट्राई टू रीजन विद देम, है ना? इफ यू आर द हस्बैंड, इफ यू आर द हस्बैंड, डोंट ट्राई टू रीजन विद देम, ठीक है ना? अच्छा, आपने सबक हासिल किया, अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तेकामत अता फरमाए। दूसरा रीजन भी कोई बताएं, टू एम्फेथाइज विद देयर इंटरनल स्ट्रगल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने रीजन बताया, बहुत अच्छा रीजन बताया, ठीक है ना, कि इनके अंदर जो इंटरनल स्ट्रगल चल रही होती है ना इनके जज्बात की मकलूबियत की वजह से, तो ट्राई टू बी इन देयर ओन, ट्राई टू बी इन देयर शूज। एम्पेथाइज का हमने मिसाली मर्द के टॉपिक में हजरत की किताब के अंदर ये लफ्ज पढ़ा था, एम्पेथी, ठीक है ना? एम्पेथी जो है वो सिंपथी से मुख्तलिफ है, सिंपथी माशाल्लाह आपने बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है ना? सिंपथी नहीं करने की जरूरत है कि बेचारी जो है वो तो बर्बाद हैं और हम उनके जो है ना वो बर्बादी के ऊपर उनके ऊपर रोना रो रहे हैं, नहीं, एम्पेथाइज करें। एम्पेथाइज का मतलब होता है पुट योर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, ताकि आप जो है ना वो उसके साथ जो है वो यानी गुस्सा ना हो और जो है ना फ्रस्ट्रेट ना हो और उसके साथ जो है ना वो अपना यानी गुबार मत निकालें उसके ऊपर, ठीक है ना? तो बहुत बेहतरीन आपने इसका इससे एक सबक हासिल किया, टू एम्पेथाइज विद द इंटरनल स्ट्रगल, ठीक है ना? तो औरत के साथ जो है ना ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना कि ये टेढ़ी मछली से पैदा की गई है, तुम इसको सीधा करने की कोशिश ना करो, सीधा करने की कोशिश ना करो, मतलब ये है कि ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ती तो उसको नमाज पढ़ने के लिए मत कहो, पर्दा नहीं करती तो उसको पर्दा करने के लिए जो है वो यानी तरगीब मत दो, ये नहीं कह रहे नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये तो फराइज हैं औरत के ऊपर। फराइज के अंदर एम्पथी करने की जरूरत नहीं है कि वो बेचारी मगलूब है अपने जज्बात से तो नमाज नहीं पढ़ती, तो लेट मी पुट पुट माई सेल्फ इन हर शूज, है ना। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी नमाज नहीं पढ़ता, है ना। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी नमाज नहीं पढ़ता, इस वजह से जो है वो नमाज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी जो है वो बेटियां और बहनें नमाज ना पढ़ रही हो तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमा रहे कि उसको तुम सीधा करने की कोशिश मत करो, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि ये मत कोशिश करो कि वो अपने जज्बात से बाहर निकल आए और वो कोई गैर जज्बाती किस्म की इंसान बन जाए और जो है ना वो बिल्कुल जो है वो यानी एक तुम्हारी तरह की हो जाए, राइट, तुम्हारी तरह की हो जाए, इसकी कोशिश ना करना, ठीक है। और किसी ने क्या जवाब दिया, नाकसुल अकल होती है टू डील विद देम डिफरेंटली। अच्छा, टू डील विद देम डिफरेंटली, ठीक है, वो तो हो गई ऊपर की दो बातों के अंदर, ये चीज कवर हो गई, सही है। और बताएं ना, जमाने के हालात से कितना वाकिफ हैं आप, दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं ये औरतों के साथ, ये बताएं, औरतों को ये क्या कर रहे हैं शैतान, राइट। अल्लाह ताला का जो दुश्मन है, जो बनी आदम का दुश्मन है, वो क्या करना चाह रहा है, क्या क्या बल्कि किस यानी ग्लोबल एजेंडा औरत के बारे में क्या है, ठीक है। सिन्फ आहन बना रहे हैं, फेमिनिज्म, राइट। तो शैतान और शैतान की जितनी कुवतें हैं, जिनमें दज्जाल सबसे बड़ी कुवत है उसकी दुनिया के अंदर, ठीक है ना, तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये इस औरत को जिसको अल्लाह ताला ने जज्बात के साथ बनाया था, जिसकी अकल जो होती है वो जज्बात से मغلوب होती है, और ये मोहब्बत का मुजस्सम होती है, ये मोहब्बत की मुजस्सम है, राइट, ये प्यार की मोहब्बत है, ये अफेक्शन की मुजस्सम है। शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ अफेक्शन, प्योरिटी, फेमिनिनिटी जिसको कहते हैं, राइट। अभी मर्दों में वो शेयर नहीं किया है, किसी साइकोलॉजिस्ट साहब का किसी ने मुझे क्लिप भेजा था, औरतों में भी शेयर किया है, तो वो साइकोलॉजिस्ट साहिबा हैं और बिल्कुल यानी पक्की अंग्रेजी बोल रही हैं, तो फिर तो बात की अहमियत होनी चाहिए ना, अंग्रेजी में बात कर रही हैं पूरी, वो भी शायद ब्रिटिश एक्सेंट के साथ, तो ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी के अंदर वो साइकोलॉजिस्ट साहिबा क्या फरमा रही हैं, वो फरमा रही हैं कि मैं ये देख रही हूं कि ये पूरी दुनिया में ना ये जो फेमिनिनिटी है ना, औरत की निस्वानियत जिसको कहते हैं, इस निस्वानियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो अब जब फेमिनिनिटी औरत की निस्वानियत खत्म हो जाती है तो फिर वो तो वो एक मर्द जैसी कोई चीज बन जाती है। बड़ा केयरफुली उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने ये नहीं कहा कि ये मैन बन जाती है, ये नहीं कहा मैन बन जाती है, लेकिन उसने बड़ी पॉलिटिकली जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब उसकी फेमिनिटी खत्म हो जाती है, निस्वानियत खत्म हो जाती है, तो फिर उसमें और मर्द में कोई फर्क नहीं रह जाता। अब जब मर्द में और औरत में कोई फर्क नहीं रह गया तो फिर औरत को मर्द की क्या जरूरत है, ना औरत को मर्द की जरूरत है, ना मर्द को औरत की जरूरत है, राइट, ना औरत को मर्द की जरूरत है, ना मर्द को औरत की जरूरत है। तो अब ऐसी औरत को जब आप जो हैं उसके अंदर से निस्वानियत खत्म करते हैं, जज्बात तो आप खत्म नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो जज्बात खत्म नहीं कर सकते औरत के, निस्वानियत खत्म कर सकते हो यानी उसका नरमपन खत्म कर सकते हो, उसका जो है ना वो क्या कहते हैं, जो मोहब्बत करने का एक है ना एक है उसके अंदर, अल्लाह ताला ने इस किस्म की जो चीजें वो आप खत्म कर सकते हैं उसको, मशीन का पुर्जा बना करके, राइट, सोसाइटी की मशीन का पुर्जा बना करके उसके अंदर से ये क्वालिटीज आप खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उस औरत की क्या हैसियत रह जाती है, वो एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती, वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती, वो घर को जोड़ करके रखने वाली चीज साबित नहीं हो सकती। लेकिन हमारे समझ में बात नहीं आ रही, हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इबरत का मुकाम है कि काफिर को ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन एक दीनदार मुसलमान को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये। वी डोंट एस्क दीज क्वेश्चंस, वी डोंट एस्क दीज क्वेश्चंस, क्यों नहीं एक दीनदार मुसलमान को जिसको कि नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत का पता है, नबी अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का खालिक और मालिक का नबी मानता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से इन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वो तैयार नहीं है, क्या है ये मसला, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस, ठीक है ना। तो अब ऐसी औरत को जो है वो आप घर से बाहर निकाल करके फिर आप उसको जो है वो इम्पोर्टेंट यानी मनसब दे देते हैं, रुतबे दे देते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसने ऐसी इनकोहेरेंस के साथ ही बात करनी है ना, उसकी इनकोहेरेंस, उसकी इसी इनकंसिस्टेंसी वो तो नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि वो तो उसके जज्बात की वजह से है। आपने उठा करके उसको जो है वो सीईओ बना दिया, आपने उठा करके उसको जो है वो यानी किसी मुल्क की जो है वो सरबराह बना दिया, किसी मुल्क की वजीर आजम बना दिया, किसी मुल्क की जो है वो कुछ और चीज बना दिया, या इवन कोई छोटे लेवल के ऊपर भी आपने कोई उसको अथॉरिटी वाला मुकाम दे दिया, तो उसने क्या करना है फिर आकर के? इनकंसिस्टेंट बातें ही करनी है, मैं ना मानूं ही करना है ना फिर उसने बात आकर के, है ना। तो मैं ना मानूं उसने करना है, असल में तो हम हैं जो कि मैं ना मानूं। नबी अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले हमें वसीयत करके नहीं चले गए थे कि जिस कौम की सरबरा औरत होती है वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब हमारे नजदीक डेफिनेशन ऑफ कामयाबी क्या है? जर्मनी। हमारे नजदीक डेफिनेशन ऑफ कामयाबी क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर हेलमेट कोहल भी थी जो है वो भी चांसलर थी औरत, और आजकल भी जो है वो जर्मनी की चांसलर शायद औरत ही है, या पिछली वाली औरत थी। तो वो जर्मनी तो कामयाब हो गया, इस वजह से हम भी जो है ना वो औरत को ऊपर ला करके कामयाब हो जाएंगे जैसे जर्मनी कामयाब हो गया। ये है तुम्हारा ईमान का हाल, ये है तुम्हारा ईमान, ये है तुम्हारा इस्लाम, ये है तुम्हारा दीन, कि जर्मनी तुम्हारे नजदीक कामयाबी की अलामत है भाई। जरा टटोल के तो देखे ना हम अपने अंदर, हम हैं क्या, वॉट आर वी मेड ऑफ, किस चीज के बने हुए हैं। सही है, क्या लिखते हैं, प्लेइंग विद देयर इमोशंस ऑफ नीड ऑफ सेफ्टी, पुशिंग देम टू वर्क सो दैट शी कैन हैव द फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक सेफ्टी। हुब्बु दुनिया, दुनिया ही सवार है जहन पर, हुब्बु दुनिया सवार है या अकल जो है वो अल्लाह ताला ने बंद कर दी है सोचने समझने की सलाहियत। साथ ही आजादी का नाम पर बेपर्दा करते हैं और बेहयाई पर उभार रहे हैं और उसको अपनी फितरत से दूर कर रहे हैं। सही है, और फिर कहते हैं जी मुल्क तरक्की कैसे करेगा अगर ये हमारी जो है ना वो 50% पॉपुलेशन घर के अंदर बंद रही, तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, यानी जहालत की कोई हद भी नहीं है, अनलिमिटेड जहालत। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, बहरहाल तो खैर नहीं कहना चाहिए। तो आगे फरमाते हैं कि उस औरत ने जब ये देखा कि मेरा राज उन औरतों को फाश हो ही चुका है, इसलिए उनके सामने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराने धमकाने लगी। वो बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि उस वक्त ये सब औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगीं कि ये औरत तुम्हारी मोहसिन है, उसकी मुखालफत नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहले तो एक औरत की इनकंसिस्टेंसी आपने सुनी, अब जो है वो पूरी जमात जो है वो औरतों की, वो जो अभी थोड़ी देर पहले जो है ना उसको मलामत कर रही थी, अब जो है वो उसको मोहसिना कह रही है, ठीक है ना। तो मोहसिन जो है वो दुनिया का पुजारी, ऐसे ही शख्स को मोहसिन कहता है जो खाना खिला रहा हो, जो पानी पिला रहा हो, जो गाड़ी दे रहा हो और जो जॉब दे रहा हो, वही मोहसिन है ना। जो आखिरत के अंदर जहन्नुम से बचा रहा हो, राइट, और दुनिया के अंदर भी दुनिया को भी जहन्नुम बनाने से बचाने वाली हमें रहनुमाई कर रहा हो, उसको दुनियादार इंसान जो है वो मोहसिन नहीं कह सकता, मोहसिन नहीं समझ सकता। वो तो उसको समझेगा कि ये क्या मुसीबत, मौलाना साहब की मुसीबत है ना, ये आकर के जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते रहते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो और ऐसे ना करो, है ना। वो उसको मोहसिन पे थोड़ी समझेगा क्योंकि उसको तो दुनिया चाहिए ना, वो तो हुब दुनिया के अंदर बुरी तरीके से मुलव्वस हुआ हुआ है, ठीक है। तो फिर जो दुनियादार होते हैं ना, या दुनिया के यानी दावेदार होते हैं, जो भी कहें आप उसको, तो फिर वो यही कहते हैं कि ये औरत तुम्हारी मोहसिन है, क्योंकि तुम्हें खाना खिलाती पिलाती है, तुम्हें कर्जे देती है, आईएमएफ जैसे कर्जे देती है, तो आईएमएफ तुम्हारी मोहसिन है, ठीक है। तो ये भाई अपनी अपनी सोच है, आप दुनिया के अंदर फायदे को ही जो है फायदा समझते हैं तो आप दुनिया वालों को मोहसिन समझते हैं, और अगर आप दीन के फायदे को फायदा समझते हैं कि वो आखिरत आपकी संवर जाएगी, तो आप जो है वो दीन वालों को अपना मोहसिन समझेंगे। दिस इज योर चॉइस, अल्लाह ताला ने यही चॉइस देकर के इंसान को इस दुनिया में भेजा है, ठीक है। कुरान करीम ने बाज अल्फाज जो आगे आते हैं उनसे भी इसकी ताईद होती है, मसलन यदउननी व कैदहुन्ना, जिनमें चंद औरतों का कौल बसीगए जमा जिक्र किया गया है, ठीक है। यानी एक औरत की बात होती तो फिर यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं करते, तो सारी औरतें जो है ना वो इन कामों के अंदर इन्वॉल्व थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ये औरतें भी उसकी मुवाफ़िकत और तायीद कर रही हैं और उनके मकरो कैद से बचने की ज़ाहरी कोई तदबीर न रही, तो फिर अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ ही रुजू फरमाया और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, रब सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैही। ठीक है, ऐ मेरे रब, जो कैद खाना है वो मेरे लिए ज्यादा महबूब है उस चीज के मुकाबले में जिस तरफ ये लोग मुझे बुला रही हैं। वह इल्ला तसरिफ अन्नी कई दहुन्ना, और अगर आपने इनके कैद को मुझसे नहीं फेरा, असबु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मुमकिन है कि मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा, उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और नादानी का काम कर बैठूंगा, लेकिन लफ्जी तर्जुमा करें तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा, अकुम मिनल जाहिलीन। तो फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि जेल खाना मुझे पसंद है, कोई कैद बंद की तलब या ख्वाहिश नहीं थी उनको कि बड़े अरसे से कैद नहीं हुए तो चलो कैद के मजे भी चखते हैं, ठीक है ना, ये उनका बस ये मकसद नहीं था उनका बिल्कुल भी, बल्कि गुनाह के मुकाबले में इस दुनियावी मुसीबत को आसान समझने का इजहार है। ठीक है, गुनाह दुनियावी मुसीबत को गुनाह के मुकाबले में आसान समझना, ठीक है ना, ये असल है जो कि कुरान मजीद अल्लाह ताला कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि गुनाह कितनी शदीद चीज है। देखो जिन जो बात को समझने वाले लोग हैं ना, वो गुनाह से कितना दूर भागते हैं और कैसे कैसे जो है वो गुनाह से अपने आप को बचाने के लिए तदबीर करते हैं, हत्ता कि दुआएं कैसी कैसी मांगते हैं। ठीक है, और तुम्हारा क्या हाल है कि तुम गुनाह को जो है ऐसे समझते हो कि जैसे कि मक्खी नाक के ऊपर बैठी थी, उड़ा उड़ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मुनाफिक गुनाह को ऐसे समझता है कि जैसे मक्खी नाक के ऊपर बैठी और उसने उसको उड़ा दिया, खत्म बात, कोई बोझ होता है मक्खी का, राइट, कुछ नहीं होता, मक्खी बैठ गई तो भाई क्या हो गया भाई। और मोमिन का गुनाह के साथ क्या मामला होता है कि जैसे एक पहाड़ उसके ऊपर रख दिया गया, पहाड़ है ना, अब पहाड़ के नीचे कोई सांस ले सकेगा, यानी पहाड़ तो लिटरल पहाड़ भी ना रखा जाए, कोई बहुत बड़ा वजन ही आपके ऊपर रख दिया जाए तो आपकी तो सांस बंद होनी शुरू हो जाती है ना, कैसी तकलीफ कैसी अजियत होती है इंसान को उसके नीचे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इतने बड़े बोझ के नीचे। तो मोमिन और मुनाफिक की तारीफ नबी अलैहिस्सलाम तो बता के चले गए, हमारे नजदीक जो है वो हमने अपनी 21वीं सदी की तारीफ बनाई हुई है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ठीक है ना, या ये के बस दीन को बदल दो, जो गुना था उसको सवाब बना दो और जो सवाब का काम था उसको गुना बना दो, खत्म बात, मसला ही हल हो गया सारा का सारा। ठीक है, तो बाज़ रिवायात में है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में डाले गए तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि आपने कैद में अपने आप को खुद डाला है, क्योंकि आपने कहा था अस्सजनु अहब्बु इलैया, यानी इसकी निस्बत मुझको जेल खाना ज्यादा पसंद है, और अगर आप आफियत मांगते तो आपको मुकम्मल आफियत मिल जाती। ठीक है, अब अल्लाह के नबी हैं और नबी के ऊपर तो कोई दूसरा इंसान होता नहीं है, लेकिन अल्लाह तो होता है ना, ठीक है ना, तो चूंकि इंसान है बशर है तो नबी से भी कभी गलती हो जाती है, लेकिन और ये गुनाह नहीं होता, ये गलती, ये कोई गुनाह को थोड़ी किया था उन्होंने, गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, लेकिन जजमेंटल गलती हो गई थी कि भाई यानी जो अल्लाह ताला के नजदीक जो है ना वो ज्यादा प्रेफरेबल चीज थी आफियत मांगना, उसकी बजाय उन्होंने लेस प्रेफरेबल चीज मांग ली। ठीक है ना, जैसे कि और भी बहुत सारे वाकयात इस तरह के नबियों के साथ हमें मालूम है, तो शेख साहब ने फिर उनकी इसलाह फरमाई। शेख कौन होता है नबियों का? अल्लाह ताला, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने फिर रिवायात यानी हदीसों के अंदर है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम इनकी नबी की इसलाह फरमाई कि भाई अगर आप आफियत मांगते ना तो आपको मुकम्मल आफियत मिल जाती। ठीक है, यानी एक तो इससे ये भी बात कि जब वो इज़्तिराब की हालत में थे ना, तो बजाय इसके के गुनाह की तरफ, अच्छा जी अब क्या करूं मैं तो मजबूर हो चुका हूं, अब तो मुझे कोई असबाब नजर नहीं आ रहे गुनाह से बचने के, तो चलो कर लेता हूं, है ना, आगे से जो है वो छुट्टी हो जाएगी, आगे से मुझे इग्नोर मुझे माफ कर दिया जाएगा, नहीं, अल्लाह ताला से तो रुजू करने का रास्ता बंद नहीं हुआ था ना, बाकी सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे लेकिन अल्लाह की तरफ का रास्ता तो कभी भी बंद नहीं हो सकता किसी इंसान, चाहे वो नबी हो चाहे वो गैर नबी हो चाहे मोमिन हो चाहे वो काफिर हो, अल्लाह की तरफ का रास्ता कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो इन्होंने अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह ताला ने फिर उनकी बात सुन ली, मान ली और हत्ता कि ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई और चीज मांग लेते तो मैं वो भी मान लेता आपकी, ठीक है, यानी आफियत मांग लेते तो आफियत भी मिल जाती। इससे मालूम हुआ कि किसी बड़ी मुसीबत से बच, अच्छा दूसरा सबक इसके अंदर हमारे लिए क्या है जो कि किताब के अंदर लिखा हुआ है कि किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए दुआ में ये कहना कि इससे तो ये बेहतर है कि फुला छोटी मुसीबत में मुझे मुबतला कर दे, मुनासिब नहीं है, ठीक है। यानी अपनी तरफ से जो है ना वो अल्लाह ताला को आइडियाज मत दें अपनी तरफ से, गोया के नाउज बिल्ला, मतलब भाई ये तो सिखाने का मामला है ना, ठीक है ना। सहाबा कराम से अल्लाह ताला ने गलतियां करवाई उम्मत की इसलाह के लिए, ठीक है ना, और फिर उन गलतियों को सीरत सीरत के अंदर महफूज किया, वरना हमें पता ही नहीं चलता सहाबा ने क्या गलती करी, राइट। क्या हो जाता अगर हमें ओहद के अंदर सहाबा से गलती हो गई, ना पता चलता हमें, है ना। नबी मेरे नबी के आशिक थे और जो है वो फलाने थे और ढिमकाना थे और सबसे अब बेहतर थे और सबसे अच्छे थे और बड़ा कुर्बानी दी, सब कुछ दी, गलती को गोल कर जाओ भाई, हो गई खत्म हो गई, बताना जरूरी है सबको, सबको बताया, बल्कि सीरत की किताबों में खाली नहीं बताया, कुरान मजीद के अंदर उस गलती का जिक्र किया, ठीक है। उसी तरह अल्लाह के अंबिया जो हैं उनकी गलतियों का भी जिक्र कुरान मजीद में किया है, ठीक है ना। इसलिए नहीं किया कि नाउज बिल्ला वो बुरे लोग थे तो तुम बुरे हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बल्कि ये सीखने के लिए, ये किताब हिदायत है, और हिदायत जो है ना फिर गलतियों से सीखना, इसको भी हिदायत कहते हैं। ये खाली खाली थ्योरेटिकल हिदायत नहीं होती कि आप थ्योरी आकर के पढ़ाए चले जा रहे हैं और प्रैक्टिकली इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के जरिए से बात ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा याद रहती है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत बनाई है, और पहले फितरत बनाई या पहले अपना कलाम बनाया, फिर उसके बाद फितरत ही उसके मुताबिक बना दी, जाहिर सी बात है पहले अपना कलाम बनाया, अल्लाह ताला का कलाम तो अल्लाह ताला की सिफत है और इंसान तो अल्लाह ताला ने बाद में तख्लीक किया है, ठीक है। तो कलाम के अंदर ये सारी बातें पहले फिर उसके बाद उसके मुताबिक फितरत बनाई कि भाई ये ऐसी फितरत बनाऊंगा कि जो कि वाकयात से ज्यादा अच्छी तरह से बात समझेगी, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला इसलाह फरमा रहे हैं कि फलानी छोटी मुसीबत ये इस तरह के, अल्लाह ताला को, भाई अल्लाह ताला को पता है कैसे बचाना है, अल्लाह ताला से एक जनरल बात मांगो, ठीक है, आफियत मांगो, आफियत में एवरीथिंग इज कवर्ड इन आफियत, बल्कि अल्लाह ताला से हर मुसीबत और बला के वक्त आफियत ही मांगनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की दुआ मांगने से एक शख्स को मना फरमाया कि सब्र तो बला व मुसीबत पर होता है, तो अल्लाह से सब्र की दुआ मांगने के बजाय आफियत की दुआ मांगो। अब इस मेरे सामने ये इस हदीस की जो है वो अरबी मौजूद नहीं है, किसी को अगर मालूम हो तो शेयर कर लें। अब उर्दू में ही हमेशा इस वाली हदीस का तस्करा पढ़ा है, तो इस वजह से एग्जैक्ट अल्फाज क्या उन्होंने मांगे थे अल्लाह ताला से तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सबर की दुआ मांगने से मना फरमाया, तो इससे कम अज कम एक बात जो बिल्कुल यानी क्या कहते हैं ऑब्वियस है या बदीही है, जाहिर है, वो क्या है कि वो जो दुआ मांग रहे थे ना कि अल्लाह मुझे सबर अता फरमाए, ठीक है ना, तो वो ऐसे नहीं कि मुसीबत आई हुई थी तो वो उसके ऊपर सबर मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है ना, या ये भी नहीं कि वो अल्लाह ताला से इस्तेकामत की दुआ मांग रहे थे, ठीक है, कि नेकी के ऊपर इस्तेकामत अता फरमाई, क्यों, इसलिए कि सबर के बहुत सारे मुख्तलिफ मौके हमारे मशायख ने बयान किए हैं कि सबर सिर्फ मुसीबत के ऊपर कंप्लेन ना करना सिर्फ ये सबर नहीं होता, बल्कि सबर के यानी नेकी के ऊपर इस्तेकामत ये भी सबर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इनका जो सबर मांगने वाली जो दुआ थी वो फिर यानी इसी मफहूम में ली जाएगी कि ये ऐसी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह सब कुछ तो बड़ा अच्छा चल रहा है तो मुझे अभी तक जो है ना वो सबर करने का यानी मौका ही नहीं मिला, तो आप मुझे कोई मुसीबत भेज दें मेरे ऊपर और फिर मुझे उसके ऊपर सबर की तौफीक अता फरमा दें, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि नहीं ये मत मांगो, इस तरीके से दुआ मत मांगो, बल्कि आफियत की दुआ मांगो, ठीक है। सहाबा के शेख जो है वो नबी अलैहिस्सलाम थे, तो सहाबा से भी गलती होती थी, नबी अलैहिस्सलाम उसकी इसलाह फरमाते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे कोई दुआ तलकीन फरमा दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब से आफियत की दुआ मांगा करें। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलकीन दुआ का सवाल किया, तो फरमाया कि अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करें, ठीक है। यानी चचा हैं, उम्र में भी थोड़े से बड़े हैं, 2 साल तो बड़े थे नबी अलैहिस्सलाम से उम्र में, तो लेकिन इल्म इल्म की कैसी तलब थी इन लोगों के अंदर, कितना सीखना चाहते थे, कैसे जो है ना वो, यानी इसको कहते हैं कदर करना, कोई बताने वाला मौजूद है तो उससे इल्म के सवाल करना, और यानी ये नहीं जो जस्ट यू नो फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब, यानी उल्टे सीधे सवाल करने का मकसद नहीं होता, बल्कि इल्म हासिल करने की नीयत से जो है ना वो सवाल करना, ये आलिम की कदरदानी होती है। तो इन्होंने कुछ अर्से के बाद फिर इस सवाल को किया, अगरचे के पहले कर चुके थे लेकिन सवाल इतना अहम था, क्योंकि दुआ जो है ना ये तो मुखुल इबादा है बल्कि हुवल इबादा है, तो इस दुआ वाली चीज, ये तो एवरीथिंग है, दुआ तो एवरीथिंग है, तो अगर दुआ के बारे में दूसरी दफा इन्होंने सवाल किया है ना, तो ये इसको ये नहीं कहा जाएगा कि खामखा का सवाल, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही बात को, क्योंकि सबसे अहम चीज जो है ना वो एक बंदे के लिए वो दुआ मांगना है, कि उसको दुआ मांगना आ जाए, ठीक है, अल्लाह के खजानों से सीख से हासिल करना आ जाए, बस काम हो गया, सारा का सारा मसला हल हो गया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका अल-अफ़ा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका अल-अफ़ा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, वाली तलिन जज़ाकुमुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अब्बास, या अम्मा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मैं अब ठीक है, लेकिन मैं उस वाले हदीस की अरबी की बात कर रहा था, इनकी अरबी की बात नहीं कर रहा था, लेकिन जज़ाकुमुल्लाह आपने इन हदीसों की अरबी भी शेयर कर ली, मैं उसकी अरबी की बात कर रहा था कि जिसमें कि उन सहाबा ने नबी ने अल्लाह ताला से सबर की दुआ मांगी थी, ठीक है, तो वो क्या अल्फाज थे, मैं उसकी बात करूं, आपने उन्हें जो लिखे हैं ना वो तो नबी अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई दुआएं हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन ये आफियत मांगने वाली दुआएं हैं, और जज़ाकुमुल्लाह, सब इसको याद करके अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखें तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और ये फरमाना कि अगर आप उनके मकरो कैद को दफा ना करेंगे, ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना असबु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिदीन, ठीक है, तो उसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये फरमाना कि अगर आप उनके मकरो कैद को दफा ना करेंगे तो मुमकिन है कि मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊं, ये उस्मत नबूवत के खिलाफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस्मत का तो हासिल ही ये है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को गुनाह से बचाने का तकवीनी तौर पर इंतजाम फरमाकर उसको गुनाह से बचा दे, ठीक है, और गो बमुक्तज़ाए नबूवत, ये मकसद पहले ही से हासिल था, मगर फिर भी गायते खौफे अदब से उसकी दुआ करने पर मजबूर हो गए। इससे ये भी मालूम हो गया कि कोई शख्स बगैर खुदा ताला की इमदाद और इआनत के गुनाह से नहीं बच सकता, और ये भी मालूम हुआ कि हर गुनाह का काम जहालत से होता है, इल्म का तकाजा गुनाहों से इज्तेनाब है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात हजरत ने यहाँ पे लिखी है, लेकिन उससे पहले जो बात है वो ये कि इस्मत नबूवत क्या है, कि नबी से गुनाह नहीं हो सकते, तो फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही कि मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा अगर आप उसको मुझसे दूर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या था कि ये अल्लाह ताला से बात कर रहे थे, ये इंसानों से अपने छोटों से को थोड़ी बात कर रहे थे, अल्लाह ताला के सामने ना, और बड़ों के सामने जब इंसान होता है ना तो फिर वो उनके हिसाब से बात करता है, बच्चों के सामने उनके हिसाब से बात करता है, छोटों के सामने उनके हिसाब से बात करता है, ठीक है, तो जैसे एक इंसान के अंदर कोई कमी कोताही है और उसको उस बात का पता है कि हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन दी है कि लोग जो है वो उसकी बात मान करके चलें, और लोग जो है वो उसको अपना बड़ा बना करके, लीडर बना करके मुआशरा चलेगा, ठीक है, तो अब ऐसे शख्स को जो है ना वो लोगों के सामने अपने ऐब नहीं खोलने चाहिए, वरना लोग जो है ना फिर वो उसको लोगों के दिलों से ना उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी या कम पड़ जाएगी, और फिर जो है ना वो उसकी बात मानने की तरफ मायल नहीं होंगे, ठीक है, तो छोटों के सामने ऐब नहीं खोलने चाहिए, यानी कौन से वाले ऐब, जो कि एग्जिस्टिंग ऐब है, माजी का ऐब इबरत के लिए या सिखाने के लिए माजी का कोई ऐब बताना इस एक मकसद से कि भाई मैं इस गुनाह में मुब्तला था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं इस गुनाह से निकल आया अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह की तौफीक से, बड़ों की बात मानने की वजह से मैं इस गुनाह से निकल आया। भाई आप भी निकल सकते हैं इस गुनाह से, ठीक है ना। तो निकल आया ना, अब कोई एग्जिस्टिंग ऐप को थोड़ी आप लोगों के सामने एडमिट कर रहे हैं कि मैं अभी भी इस ऐप में उबतला हूं, ठीक है। लेकिन छोटों के सामने अपने करंट कोई ऐसी चीज नहीं खोलने देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसको जो है वो अल्लाह ताला यानी उसके ऊपर पर्दा डाल दें। जब भी तो मशायख दुआ करते हैं हमारे हजरत, और साजिश का भी अलहमदुल्ला ही मामूल है कि पहला पहला जुमला क्या कहते हैं, ए अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अरे ए अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, क्योंकि हमारे ऐब अगर लोगों के सामने खुल गए तो फिर जो दीन का काम आपने करने को दिया है तो वो काम हम वैसे नहीं कर सकेंगे। जब भी उमर रज़ी अल्लाह दुआ मांगा करते थे ना, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनि नासे कबीरा, लोगों की निगाहों के अंदर मुझे बड़ा बना दीजिए लेकिन मेरी निगाह के अंदर मुझे छोटा बना दीजिए, ठीक है। तो लोगों की निगाहों में बड़ा बनाने का मतलब क्या है, मेरे आंखों की पर्दापोशी फरमा दीजिए, ठीक है। लेकिन जब बड़ों के सामने जाते हैं तो भाई बड़े ने तो फिर ना सिर्फ ये के इसलाह करनी होती है, रास्ता बताना होता है, बल्कि दुआ भी करनी होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से बड़े के सामने जाकर के अपना ऐप बताना जो है वो इसके खिलाफ नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने ऐसी बात करी तो ये इस्मत नबुवत के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। अच्छा जज़ाकुल्लाह, माशाल्लाह उन्होंने तो पूरी हदीस ही लिख दी कि हजरत मुआज़ बिन जबल अजम फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि जो ये दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सब्र, अल्लाह मैं आपसे सब्र मांगता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया कि सअलतल्लाहल बलाआ, कि सब्र तो बलाओ मुसीबत पर होता है, फसलहुल आफिया, तुम अल्लाह से सब्र की दुआ मांगने की बजाय आफियत की दुआ मांगो, ठीक है। तो माशाल्लाह यही हदीस के अल्फाज हैं और इसके अंदर जो है वो असअलुका सब्रा का ही लफ्ज है, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पर हम अपने हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सबर तो 5 मौके पे किया जाता है, जबकि इस हदीस के अंदर तो सिर्फ एक ही मौके का जिक्र है। तो इसका इसकी फिर कोई ना कोई जो है वो तावील निकाली जाएगी या कोई इसकी यानी तशरीह निकाली जाएगी, जो कि हमारे मशायख ने यकीन निकाली होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इन सहाबा के अहवाल से वाकिफ थे, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के अहवाल से वाकिफ हुआ करते थे, तो किसी के मुंह से कोई लफ्ज सुन करके उसका क्या मफहूम, किस मफहूम से ये बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम को इसका इल्म होता था, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किसी के अहवाल को जानते हैं, अब डॉक्टर जो है वो पेशेंट के अहवाल को नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा। तो सहाबा पेशेंट्स थे, नबी अलैहिस्सलाम उनके डॉक्टर थे, ठीक है। तो डॉक्टर को पेशेंट का पता है कि ये सबर मांग रहा है, ये जो है ना ये वो वाला सबर नहीं मांग रहा, ये जो है वो मुसीबत की यानी बला वाला सबर मांग रहा है, उधर ही उनकी इसलाह फरमा दी, ठीक है ना। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से फिर बात समझ में आती है, और पूरा का पूरा दीन जो है वो कॉन्टेक्चुअल ही है, ठीक है। तकरीबन यानी वो के तो तकरीबन कहा जाए पूरा कहा जाए, लेकिन कॉन्टेक्स से ही बात समझ में आती है। तो बहरहाल ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो ये तो हो गया इस्मत अंबिया वाली बात, और आखिरी बात जो शायद आज की क्लास में भी इसी को हमें खत्म करना होगा कि जो हजरत ने फरमाया ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वह अकुम मिनल जाहिलीन, ठीक है, कि अगर आपने नहीं फेरा ना इस इनके कैद को मेरी मेरे ऊपर से, ठीक है, तो यानी सद्दबाब नहीं किया, मुझे इससे महफूज नहीं किया, तो मैं जुहला में से हो जाऊंगा, जाहिलीन में से हो जाऊंगा। तो उसके ऊपर उसे शफी रहमतुल्लाह ने कितनी यानी यूनिवर्सल कुल्लिया कुल्लिया लिखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा है कि हर गुनाह का काम जहालत से होता है, इल्म का तकाजा गुनाहों से इज्तेनाब है, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहली तो बात आती है अवामुन्नास की, ठीक है ना। अवामुन्नास वो होते हैं कि जिनको कि जो है ना वो गुनाह सवाब का इल्म ही जो है वो या तो बिल्कुल भी नहीं होता या बड़ा बड़ा वाजबी सा बड़ा सुपरफिशियल किस्म का होता है, ठीक है। तो चूंकि इल्म ही नहीं होता ना, तो इस वजह से वो गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और उनको यानी समझ में नहीं आ रही होती कि ये तो मैं गुनाह कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो दीन है ना वो है इल्म हासिल करने से उसकी इब्तिदा होती है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, है ना। ये हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो इस लफ्ज खूब इस्तेमाल किया है, हमारा दीन जो है वो पढ़ने का हुक्म देता है, और पहला लफ्ज जो है वो पढ़ना है और ये है और वो है, तो साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो और मैथ पढ़ो और ये पढ़ो। भाई ठीक है पढ़ो, यानी इस तरह मत पढ़ो कि तुम्हारा दीन ही खत्म हो जाए, ईमान खत्म हो जाए, लेकिन पढ़ो तो ना कम से कम, ठीक है। लेकिन भाई फराइज और वाजिबात और हराम और मकरूह तहरीमी इनको नहीं पढ़ना, ये तुम्हें ऊपर से वही वही नाजिल हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो तुमने उस्तादा के पास जाकर के पढ़नी है, बाकी चीजें तुम्हारे ऊपर वही नाजिल हो जाएगी। तो नहीं भाई, ये भी पढ़ना है और ये पहले पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह का तो हिसाब किताब पता नहीं होगा नहीं होगा, या मौका भी मिलेगा तुम्हें उसके ऊपर अमल करने का कि नहीं, लेकिन इस इल्म का तो तुम्हारे साथ फौरन फौरन हिसाब किताब है, ठीक है। तो और जिंदगी कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो इल्म जो है ना, ये बुनियाद है, ठीक है ना, अमल इस बुनियाद के ऊपर बनता है, ठीक है ना। अमल गोया के यानी आपकी जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना, वो अमल है, और इल्म जो है वो बुनियाद है, ठीक है। और उस बुनियाद की जो प्लिंथ है, जो बिल्कुल ही जो नीचे एक प्लेट डाली जा रही होती है, वो ईमान है, ठीक है। तो इल्म बुनियाद है, जब इल्म ही सही नहीं है या इल्म है ही नहीं, तो अमल किस बात का, कैसे अमल करेंगे। तो इस वजह से जो है ना, वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक मसला मौजूद है, वो ये है कि हम पता नहीं क्यों ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि हमारे पास इल्म मौजूद है। यानी जो लोग दीनदार हैं, जो लोग दीन की फिक्र कर रहे हैं और अमल वमल भी कर रहे होते हैं ना, वो बस बहुत सारी अजम्पशंस की बुनियाद पे बैठे हुए होते हैं कि जी इल्म मौजूद है, बस हमारे अमल में कुछ कमी है। मसहफी तुम तो समझे थे होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला, ठीक है ना। यानी हम समझ के बैठे हुए कि बस बस थोड़ा सा अमल की कमी है, इल्म तो पूरा है, ठीक है ना। नहीं भाई, आपका इल्म ही नहीं है, इल्म आपका पूरा तो छोड़ दें, पूरा तो दूर की बात, बल्कि हकीकत यह हमारी है कि हमारा जो इल्म है ना, वो गलत इल्म हुआ हुआ है। हम बहुत ही गलत फहमी में मुब्तला हैं, लोगों चीजों की हमने समझ ही गलत रख के करके रखी हुई है, बहुत बुनियादी लेवल के ऊपर हमारा यह मसला है, ठीक है। तो इल्म से शुरू करना है बात को, ठीक है। और अगर आप इल्म से शुरू नहीं कर रहे, आप अमल से काम शुरू कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स आप गलत कर रहे हैं और आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आप अमल जो करेंगे ना, वो मोस्ट लाइकली आप गलत अमल कर रहे होंगे, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, बल्कि नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो इल्म को ना कम हैसियत नहीं दे सकते, हम दूसरे अंदाज में देखना शुरू कर देंगे, वो पढ़े चले जा रहे हैं और अमल की तौफीक नहीं है, अमल नहीं कर रहे हैं, और ऐसे इल्म का क्या फायदा है जिसके ऊपर अमल ही नहीं कर रहे हैं, और इल्म जो है वो आपके खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। भाई वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बातें कही जाती हैं, हम यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि इल्म है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। किताबें पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि जी बड़ा इल्म आ गया, हालांकि समझ में कोई नहीं आ रहा होता कि किताबों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर यानी अब जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो उसी को फिर एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे पेश कर सकते हैं कि जी कोई नौजवान है, तो उन नौजवान ने जो है ना, वो यानी अच्छा खासा दीनदार फैमिली और सब कुछ ठीक ठाक वगैरह, यानी नमाजें वमाजें पढ़ रहे हैं, एकदम से जो है नमाजें पढ़नी छोड़ दी, ठीक है। अब जब नमाजें पढ़नी छोड़ दी, तो फिर किसी ने फिक्र करी कि भाई आपने नमाजें क्यों पढ़नी छोड़ दी, तो आगे से जो है ना, फिर वो यानी वही सवाल, ठीक है, कि भाई अगर जो नमाज पढ़ रहे होते हैं वो भी तो गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर एक नमाजी और बेनमाजी में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये जो है ना, वो गोया के उन्होंने जहन में, मुझे पूरी तफसील नहीं पता, लेकिन फिर भी जो उनका सवाल लिखा हुआ था, तो उसकी बुनियाद पर ये बात समझ में आई है कि जी इस बुनियाद पर कि भाई जो नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो वो गुनाह का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि है हमारा मुशाहिदा, सबका ही मुशाहिदा है कि हम सभी नमाज माशाल्लाह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन गुनाह भी कर रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, और गिबत भी कर रहे होते हैं, और लोगों के ऊपर जुल्म भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर नमाज पढ़ने का क्या फायदा, ठीक है। अब ये जो एक एक जहन में एक बात आ गई, या शैतान ने डाल दी, जाहिर सी बात है, अब जो है वो नमाज पढ़नी छोड़ दी, ठीक है। तो देखें कितनी बुनियादी सी बात है ना, नमाज पढ़ना तो दीन के फराइज में सबसे पहला फर्ज है ईमान के बाद, ठीक है। लेकिन ये जो सोच है कि भाई चूंकि नमाज पढ़ने वाला भी जो है वो गुनाह कर रहा है और नमाज ना पढ़ने वाला भी गुनाह कर रहा है, तो नमाज का फायदा क्या? अब इनको हो सकता है थोड़ा बहुत ये भी इल्म हो कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, है ना, कि नमाज जो है वो तो फोहश और मुनकर यानी जिन चीजों से मना किया गया मुनकरात तो उनसे रोकती है। तो अब इनको तो रोका नहीं नमाज ने, ये तो गुनाह करते हैं, तो झूठ बोलते हैं, तो गीबत करते हैं, तो है ना, तो फिर नमाज का क्या फायदा? ठीक है, अब इस बंदे का मसला क्या कि इसके पास इल्म नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज को रीजन बना करके खुद को जो है वो एक फर्ज से दूर कर रहा है कि जिसकी एक बड़ी सिंपल सी और बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर एक्सप्लेनेशन है, जो कि इसके पास नहीं है। ठीक है ना, तो अगर वो एक्सप्लेनेशन इसको मिल जाए या ये उसको हासिल कर ले, ठीक है, तो फिर ये इतने बड़े गुनाह कबीरा से बच सकता है, यानी नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है कबीरा है ना। फुकहा में से तो कितने हैं कि जो कि नमाज छोड़ने वाले को ईमान से ही फारिग कर देते हैं, आप ये तो बंदा काफिर हो चुका है इसने नमाज छोड़ दी, तो ये मामूली मसला तो नहीं नमाज छोड़ देना। लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इल्म हासिल करना जो है ना, इससे मुराद हमारी ये नहीं है कि जी आलिम जो है वो दकीक किस्म के मसाइल पढ़ो और उसूल पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, भाई बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जिसके ऊपर आपका दीन की बुनियाद बनती है, ईमान की बुनियाद बनती है, वो नहीं है हमारे। यही बात आखिरी करना चाह रहा था कि वी रियली रियली नीड ए डेफिनेशन के इल्म जो लाजिमी इल्म है ना, एसेंशियल इल्म है, वो क्या है। ठीक है, जिसके बगैर जो है ना ला बुद्दा मिन, इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक आमी इंसान के बारे में कि उसके पास इल्म होता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी होता है कि किसी शख्स के पास इन चीजों का इल्म है लेकिन फिर भी वो गुनाह करता है, तो वो फिर कैसे जस्टिफाई होगा? ठीक है कि गुनाह तो है, यानी इल्म का तकाजा तो गुनाहों से इज्तनाब है, तो फिर ये इल्म वाले साहब जिनको के इन सारी चीजों को पता है, तो वो फिर कैसे गुनाह कर लेते हैं? वो ऐसे कर लेते हैं कि नफ्स की ख्वाहिशात जो है ना और रूहानी बीमारियां जो होती हैं वो इस इल्म को के ऊपर गालिब आ जाती हैं, और वो उस लम्हे जिस वक्त के वो गुनाह कर रहा होता है ना, ये जिस वक्त गुनाह उसके सामने प्रेजेंट किया जा रहा होता है और फिर वो उसकी तरफ लपक रहा होता है, उस वक्त जो है ना वो जाहिल हो जाता है। ठीक है ना, और उसके उस वो इस चीज से जो है ना वो गाफिल हो जाता है कि इस गुनाह के नतीजे में मुझे क्या सजा मिलेगी, है ना, उस वक्त उसके जहन से ये इल्म सजा का इल्म महव हो जाता है। ठीक है ना, डिलीट हो जाता है, और इस वजह से वो गुनाह कर लेता है, और फिर उसके बाद जो है ना वो वापस आ जाता है, फिर उसे उसको सारी चीजें याद आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वो भी जाहिल ही होता है जिस वक्त वो ये गुनाह कर रहा होता है, क्योंकि जब किसी को किसी गुनाह किसी भी अमल के सजा का ध्यान होना, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो गुनाह करे। अब आप खुद सोच लें, मैं छोटी सी मिसाल आपसे चंद मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ले चुका हूं बल्कि, छोटी सी मिसाल के साथ। ठीक है ना, कि आप जो है ना वो किसी इंसान को जा करके डांटना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। ठीक है, तो जिन लोग को गुस्सा ज्यादा आता है वो आके वो लोगों को डांटते हैं, मारते हैं और वो गुस्सा करते हैं। ठीक है, लेकिन यही इंसान जिसको गुस्सा बड़ा ज्यादा आता है और जिसको जो है ना वो जुबान के ऊपर काबू नहीं है, ये अपने दफ्तर के बॉस के सामने जा करके ये डांटना और उल्टी सीधी बातें कहना नहीं करता, हालांकि इसको गुस्से पर काबू नहीं है, हालांकि इसको जो है वो बहुत सारे इसके मसले हैं, जुबान पे काबू नहीं, गुस्से पे काबू नहीं, वगैरह वगैरह, लेकिन दफ्तर का जो बॉस होता है उसके सामने जाके ये क्या हो जाता है इसको भाई, है इसलिए कि इसको पता होता है कि ये जो बंदा है ना सामने बैठा हुआ है ना, इसके भी दो कान हैं, इसकी भी एक नाक है, इसकी भी जो है वो दो आंखें हैं, मेरे जैसा इंसान है, लेकिन इसके पास एक अथॉरिटी ये है कि ये मुझे अभी फारिग कर सकता है, ठीक है ना, ये मुझे अभी फारिग कर सकता है। तो यही गुस्से के असीर इंसान जो है ना, ये वहां पे बंदा बन करके, बंदे का पुत्र बन करके रहते हैं, ठीक है ना। और जहां पे उसको ये बात पता होती है कि नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं कर सकती, ये बीवी है, ये इसने मुझे क्या करना है, या बच्चा इसने मुझे क्या करना है, ठीक है ना, कोई सजा का इसको पता होता है, कोई सजा नहीं मिलने वाली है, तो वहां पे जाकर के निकालता है सारी की सारी, अपनी सारी जहान की जो है वो गुस्सा जाकर के उनके ऊपर जाकर के निकालता है, ठीक है। तो इसको पता नहीं होता ना कि उस वक्त ये भूल चुका होता है कि भाई एक इनके ऊपर भी है, ठीक है ना, जो कि मेरे इस अमल के ऊपर वाकिफ भी है और जो कि मुझे उसके ऊपर सजा भी देगा, ठीक है। तो इल्म का तकाजा गुनाहों से इज्तनाब है। गुनाहों का मुर्तकिब हो जाने का मतलब ही ये होता है कि इंसान के अंदर या तो मुस्तकिलन इल्म मौजूद नहीं है, या ये कि मौजूद तो है लेकिन गुनाह करने के वक्त जो है ना ये भूल चुका है उस वाले इल्म को, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बात की समझ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लफ्ज आफियत की तशरीह कर सकते हैं, लफ्ज आफियत की तशरीह यही होगी कि यानी हर किस्म की जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं ना, उनसे अल्लाह ताला आप मेरी हिफाजत फरमा दीजिए। हर किस्म की नुकसान पहुंचाने वाली, चाहे वो दुनिया में नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो, चाहे वो आखिरत के नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो, तो आफियत का यानी मुझे जो है ना वो एक्सपोजर ही ना दीजिए, ठीक है। गमे हयात के साए मुहित ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना, यह है आफियत की दुआ, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना, ठीक है ना, मुझे एक्सपोजर ही नहीं देना है अल्लाह, बस बस अपनी नेमतों के अंदर रख और मुझे उन नेमतों के ऊपर आपका शुक्र अदा करने की तौफीक देता रहे, बस ऐसी मेरी सारी जिंदगी कट जाए और मैं तेरे पास वापस आ जाऊं, बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे ना मुझे एम्बिशियस एम्बिशंस नहीं चाहिए, मुझे मुझे यहाँ पे जो है ना वो एडवेंचर नहीं चाहिए कि मुझे हर वक्त जो है वो एक किस्म नई किस्म की सिचुएशन मिले और फिर मैं उसके ऊपर काबू पाऊं और ये करूं और वो करूं, है ना, नहीं नहीं अल्लाह बस आफियत के साथ ये जिंदगी बस मेरी कट जाए और मैं आप ही के पास से आया हुआ हूँ, आई हुई हूँ, और मैं बस आपके पास वापस आ जाना चाहता हूँ, है ना, बस ऐसे मेरी जिंदगी गुजार दीजिए, ईमान के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ, अमलों की तौफीक के साथ। तो बस ये तशरीह हो गई आफियत की, इंशाल्लाह, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।